प्रिय श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें आपसे जानकर बहुत खुशी हो रही है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। आज हम बाइबल के पुराने नियम में से यहेजकेल नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और महिमा। यहेजकेल एक नबी थे और उनकी सेवा ये थी कि वो बेबीलोन के निर्वासन में यहूदियों को प्रोत्साहन दे, साथ ही उस नई पीढ़ी को जो बंधुआई में उत्पन्न हुई उन्हें स्मरण दिलाए कि प्रजा के कैसे कैसे पाप उसकी गिरी हुई स्थिति के कारण थे। यहेजकेल का संदेश इसराइल के संपूर्ण घराने के लिए था। नबी ने अपनी नबुवतों में यह स्पष्ट प्रकट किया कि परमेश्वर ने यहूदियों को बंधुआई में जाने दिया। इसमें वो पूर्ण सच्चा और न्यायी था। यहेजकेल इसराइल के सर्वोच्च परमेश्वर की महिमा पर विशेष बल देता है। आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम शामिल हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मेरे मित्रों, मैं आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज हमारे इस कार्यक्रम को पहली बार सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब पिछले दिनों में तिमोथियुस की दूसरी पत्री से अध्ययन कर रहे थे, जिसका लेखक पौलुस तिमोथियुस को पत्र लिखा और जिसमें हमने देखा कि तिमोथियुस को किस प्रकार से पौलुस ने समझाया कि एक सेवक के रूप में, एक विश्वासी के रूप में उसे किस प्रकार का जीवन जीना है। तो मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं और पुराने नियम की पुस्तक यहेजकेल की पुस्तक से हम अध्ययन को आरंभ करेंगे। आज हम उसके परिचय और एक अध्याय और उसके तीन पद तक का अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके वचन का फिर से एक बार अध्ययन कर सकें। आज जब हम पुराने नियम की पुस्तकों में से यहेजकेल की पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं, पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हर एक जब हम एक साथ मिलकर आपके वचन का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। आप मुझसे भी बातचीत करें, मुझे भी सिखाएं, ताकि हम सब मिलकर के आपको महिमा दे सकें। इस घड़ी हमारी प्रार्थना है उन तमाम भाई बहनों के लिए भी जो अपने जीवन से निराश और परेशान है, बीमार अवस्था में है या अपने नौकरी की तलाश में है, अपने वैवाहिक जीवन के लिए योग्य जीवन साथी की तलाश में है या किसी प्रकार के तनाव और दबाव में है, पिता परमेश्वर, आप उन पर भी अपनी अनुग्रह प्रदान करें। आज इस अध्ययन के द्वारा आप हम सब से बोले और बातचीत करें, हमें आशीषित करें। इस अध्ययन को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम अपने अध्ययन में यहेजकेल नबी की पुस्तक से अध्ययन करेंगे, आज हम भविष्यवाणियों में यहेजकेल की पुस्तक का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। आपको स्मरण होगा कि यिर्मयाह ने यहूदा वासियों को बार बार चेतावनी दी कि वे परमेश्वर की ओर फिरें और दंड से बचें, परंतु उन्होंने परमेश्वर के वचन को और यिर्मयाह जो एक भविष्यद्वक्ता था उसको तुच्छ जाना और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथों में सौंप दिया, अर्थात राजा नबूकदनेस्सर को नियुक्त किया कि वह उन्हें बंधुआई में ले जाए। राजा यहोयाकीम के राज्य काल में पहली बार राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उच्च वर्ग के लोगों को, जो अच्छे बुद्धिजीवी लोग थे जिनके पास में हुनर थे, बंदी बना करके ले गया, जिसमें दानियल भी था। यहोयाकीम के बाद यहोयाकीन यहूदा का राजा हुआ, परंतु 3 माह के बाद ही बेबीलोन की सेना ने 597 ईस्वी पूर्व में दूसरी बार आक्रमण किया और आकर के उन्हें बंदी बनाकर ले गए। इन बंदियों में यहेजकेल भी एक था। तो मेरे मित्रों, यहेजकेल एक याजक था, इसे हम 1 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं। परंतु उसने याजकीय सेवा नहीं की, क्योंकि वह बंदी बनाकर बेबीलोन को ले जाया गया था। और इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय उसके 10 से 16 पद में। तो हम देखते हैं कि यहेजकेल यर्मिया और दानियल का समकालीन था। इस समय यर्मिया बूढ़ा हो गया था, उसने राजा योशिय्याह के राज्य काल में सेवा आरंभ की थी। उस समय वह एक युवा था, वह स्वदेश में रुक गया था और अंत में बचे हुए यहूदा वासियों द्वारा बलपूर्वक मिस्र ले जाया गया था। अतः इस समय उसकी सेवा मिस्र प्रवासी इसराइलियों के मध्य में थी। इस समय दानियल बेबीलोन के राजा का प्रधानमंत्री बन गया था और यहेजकेल बेबीलोन की नहर के किनारे बसे हुए इसराइली बंदियों अर्थात गुलामों के बीच में वास कर रहा था। यह नहर मीलो दूर बह रही थी, जो परात नदी से निकलकर बेबीलोन को लाई गई थी। यहेजकेल इन्हीं बंदी इसराइलियों के मध्य में सेवा कर रहा था। कृपया इस बात का आप ध्यान रखें ताकि हम इससे और अच्छी रीति से समझ सकें। भजन संहिता 137 में इन प्रवासी बंदियों का भी भजन है। भजन संहिता 137 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। परंतु इसी समय यहेजकेल लिखता है, यहेजकेल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद में, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। मेरे प्रियो, कैसी विषमता है। यहूदा वासी अपनी वीणाएं पेड़ों पर लटकाकर रो रहे थे और इधर यहेजकेल परमेश्वर का दर्शन पा रहा था। हम देखते हैं कि यर्मिया, यहेजकेल और दानियल तीनों भविष्यद्वक्ता थे, परंतु उनकी अपनी अपनी विशेष सेवाएं थी और उनके लक्ष्य समूह भी अलग अलग थे। तीनों की परस्पर भेंट कभी भी नहीं हुई थी। दानियल की पुस्तक के वृतांत से आप यह निष्कर्ष नहीं निकालेंगे कि दानियल बेबीलोन में रहने वाले अपने देश बंधुओं से कभी भेंट करने गया जहां यहेजकेल रहता था, परंतु वह उनके विषय में चिंतित रहता था और सच तो यह है कि वह उनका पक्ष भी लेता था। मेरे प्रियो, अब प्रश्न यह है, क्या दानियल और यर्मिया एक दूसरे से परिचित थे? इस पुस्तक से यह तो स्पष्ट है कि दानियल यर्मिया की भविष्यवाणियों को सुन चुका था। मेरा अपना विचार है कि अपनी किशोर अवस्था में दानियल यरूशलेम में यर्मिया की भविष्यवाणियों को सुनता होगा। बंदी बनाए जाने के समय यहेजकेल भी एक युवक ही था और उसने भी यर्मिया की भविष्यवाणियों को सुना था, परंतु वह दानियल को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। मेरे मित्रों, यहेजकेल का संदेश सब भविष्यद्वक्ताओं में सर्वाधिक आत्मिकता का है, क्योंकि उसने विशिष्ट रूप से परमेश्वर के व्यक्तित्व की चर्चा की है। किसी ने कहा है, यहेजकेल परमेश्वर के आत्मा का भविष्यद्वक्ता था, जिस प्रकार के यशाया पुत्र परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था और यर्मिया पिता परमेश्वर का। बंधुआई के आरंभिक वर्षों में झूठे भविष्यद्वक्ता कहते थे कि यहूदा वासी शीघ्र ही यरूशलेम लौटेंगे और यरूशलेम को ध्वंस नहीं किया जाएगा। निसंदेह दूसरी बंधुआई के समय भी यरूशलेम ध्वंस नहीं किया गया था, उसे नाश नहीं किया गया था। 586 ईस्वी पूर्व अर्थात लगभग 10 वर्ष पश्चात नबूकदनेस्सर तीसरी बार आया और यरूशलेम को ध्वंस कर दिया। अतः इस 10 वर्षीय कालांतर में झूठे भविष्यद्वक्ता कहते रहे कि यरूशलेम नष्ट नहीं होगा, यरूशलेम नष्ट नहीं होगा और यहूदावासी लौट आएंगे। जबकि यर्मिया ने बेबीलोन में संदेश भेजा था कि यरूशलेम नष्ट होगा और यहेजकेल ने उसके संदेश की पुष्टि की। उसने कहा कि यरूशलेम लौटने से पहले उन्हें मन फिराकर परमेश्वर के निकट आना होगा। मेरे प्रियो, समय आने पर बहुत ही कम लोगों ने परमेश्वर की ओर मन लगाया और बड़ी निराशा में यरूशलेम पहुंचे। यहेजकेल ने बंधुआई में जाने के 5 वर्ष बाद भविष्यवाणी की सेवा आरंभ की थी। उस समय वह लगभग 30 वर्ष का था। अतः अनेक समयों में उसका संदेश इसराइल के गहनतम अंधकार के पलों में दिया गया था। वह घाटी के नीचे अंधकार भरे कोने में खड़ा था। उसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं द्वारा बंधाई गई झूठी आशा और पाप एवं विनाश के समय की उदासीनता और अविश्वास का सामना करना पड़ा था। उसके साथ भी यर्मिया का शाही व्यवहार किया गया, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यर्मिया के साथ भी किस प्रकार का व्यवहार किया गया था। उसे थप्पड़ मारे गए, उसे बंदी गृह में डाला गया, बंद कमरे में रखा गया। ये सारी बातों को आप जानते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहेजकेल नबी के साथ में भी यर्मिया के समान ही व्यवहार किया गया। मेरे प्रियो, इसराइली उसका संदेश सुनना नहीं चाहते थे, अतः उसने एक नई विधि अपनाई। उसने प्रभु यीशु की नाई दृष्टांतों में कहने की अपेक्षा दृष्टांतों को अभिनय के रूप में प्रदान किया। जी हाँ, उसने कुछ दृश्य तो वास्तव में बड़े ही रोचक दर्शाए। यहेजकेल की पुस्तक 24 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, इस रीति यहेजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, जैसा उसने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे। जब यह हो जाए तब तुम जान लोगे कि परमेश्वर यहोवा ही है। वे उसकी बातें नहीं सुनते थे, अतः वह अभिनय करके दिखाता था और इस प्रकार वह बहुतों का ध्यान आकर्षित करता था। मेरे मित्रों, आज भी ऐसा ही अभिनय किया जाता है। नारे लिखकर चिपकाए जाते हैं, झंडे फहराए जाते हैं, झांकियां निकाली जाती है। यह सब ध्यान आकर्षित करने और प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। यहेजकेल ऐसा ही करता था। एक बार उसने अपने आप को घर के अंदर बंद करके उसने सुरंग बनाई और सड़क के मध्य में बाहर निकला। आज तो सड़कें खोदना एक आम बात है, परंतु जब यहेजकेल सड़क खोदकर बाहर निकला तब वहां जनसमूह खड़ा हो गया और लोग कहने लगे, यह क्या नाटक है। परंतु इसमें यहेजकेल का एक संदेश था जो उसने यहेजकेल के पुस्तक 12 अध्याय उसके 8 से 16 पद में सुनाया है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि यहेजकेल परमेश्वर की महिमा का भविष्यद्वक्ता है। उनके स्वदेश से निकाले जाने के बाद 3 भविष्यद्वक्ता संदेश सुनाते थे, यहेजकेल, दानियल और यहुना, जिसने पतमोस द्वीप से लिखा था। तीनों ने ही रहस्योद्घाटन साहित्य लिखा था। तीनों ने प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग किया था। उन्होंने प्रचंड ज्योति देखी और सब भविष्यद्वक्ताओं में सबसे अधिक आशा रखी। यहेजकेल ने परमेश्वर की महिमा शकीनाह को मंदिर से प्रस्थान करते हुए देखा, परंतु उसने महिमा को लौटते हुए भी देखा जो भावी घटना है और प्रभु राज अर्थात सहस्त्र वर्षीय राज्य के समय लौटेगी। मेरे मित्रों, यहेजकेल का अर्थ प्रभु राज के महिमा के लौट आने में दिखाई देता है। यहेजकेल ने प्रभु यीशु के कष्टों के पार आने वाली महिमा को देखा, जिसे हम पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं। मेरे विचार में अन्य सब भविष्यद् वक्ताओं की तुलना में यहेजकेल ने सबसे अधिक स्पष्ट इसे देखा था। जी हाँ, यह बहुत ही स्पष्ट है जो परमेश्वर की महिमा को यहेजकेल ने देखा, और ये एक भावी संदेश भी है जिसे हम आने वाले समय में देखेंगे। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर हम अपने परिचय को अंत करते हुए और आगे बढ़ते हैं और इस पुस्तक के अध्याय 1 में आते हैं, जिसका विषय है परमेश्वर की महिमा का प्रदर्शन। परमेश्वर की महिमा का दर्शन जो यहेजकेल ने देखा, वह संपूर्ण धर्मशास्त्र के समस्त दर्शनों की कुंजी है। जी हाँ, यहेजकेल की पुस्तक के लिए तो यह निश्चय ही मुख्य विषय है। बहुत से विचारकों का विचार है कि प्रकाशित वाक्य के पुस्तक की विषय वस्तु दानियल की भविष्यवाणी और प्रभु यीशु के जैतून के पर्वत के उपदेश पर निर्भर है। यह सच है, परंतु मेरे विचार में यह मुख्यतः यहेजकेल के रहस्योद्घाटन पर निर्भर है, और यहेजकेल के दर्शन, जिसे हम अध्याय 1 और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 4 और 5 में असाधारण समानता है। जी हाँ, यह दर्शन समझने और समझाने के लिए अत्यधिक कठिन है। जॉन कैल्विन ने कहा था, यदि कोई पूछे कि क्या यह दर्शन प्रकाशमान है, तो मैं इसकी अज्ञानता का अंगीकार करता हूँ, और यह भी कि मैं इसे कठिनाई से ही समझ पाता हूँ। मैं कैल्विन की इस बात से सहमत हूँ। जी हाँ, मैं भी यहेजकेल के दर्शन को स्पष्ट नहीं समझ पाता हूँ। मैं एक बात तो निश्चय जानता हूँ कि यह दर्शन आज के तकनीकी युग का दर्शन नहीं है। यहेजकेल के दर्शन में जो पहिया पहिए में है, वह हवाई जहाज की भविष्यवाणी नहीं है। जब हवाई जहाज बनाए गए, तब बहुत से बाइबल शिक्षकों ने कहा कि यहेजकेल का यह दर्शन हवाई जहाज की भविष्यवाणी है। आज जेट विमान है जिनके पहियों में पहिए नहीं है। अतः हम इस व्याख्या को तो अलग कर दें, ऐसी व्याख्याएं बचकाना है। जी हाँ, मूर्खता की बातें हैं जिनके कारण भविष्यवाणी का निरादर होता है। मेरे प्रियो, यहेजकेल अध्याय 1 में हमारे सामने जो वृतांत है, वह मेरे विचार में परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। यशाया के पुस्तक में परमेश्वर के सिंहासन के सिद्धांत हैं, यर्मिया के पुस्तक में उस सिंहासन के अभ्यास हैं, परंतु यहेजकेल की पुस्तक में उस सिंहासन पर बैठा व्यक्ति है। मैं यह कहने में विलंब नहीं करना चाहूंगा कि इस दर्शन में परमेश्वर को प्रकट नहीं किया गया है, अर्थात उसका प्रदर्शन नहीं है। अपनी सेवा के आरंभ में मैं इसे परमेश्वर का दर्शन समझता था, परंतु यह परमेश्वर का दर्शन नहीं है। यह परमेश्वर की महिमा का, उसकी उपस्थिति का दर्शन है। मेरे प्रियो, यहां हम परमेश्वर के रथ का दर्शन देखते हैं। वह समय में विजय के साथ बेरोक टोक चलता जाता है। इस दर्शन में एक हिला देने वाला दृश्य है, जिसे जब मैंने पहली बार देखा तो मैं भौचक्का रह गया था। जी हाँ, यह रथ खाली है। मैं तो यह मानकर चल रहा था कि परमेश्वर रथ में सवार है। वहां 4 प्राणी हैं, करूब, जो रथ के साथ जुड़े हुए हैं, परंतु वे हैं अलग। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां एक सिंहासन है और सिंहासन पर कोई बैठा है। यह परमेश्वर का सर्वोत्तम दर्शन है, जिसे समझना बहुत ही कठिन है। हम इसके कुछ प्रभावी पक्ष को देखेंगे। तो आइए इस समय आप मेरे साथ यहेजकेल की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़िए। लिखा हुआ है, तीसवें वर्ष के चौथे महीने के पांचवें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, तीसवें वर्ष, इससे संकेत मिलता है कि यहेजकेल की आयु 30 वर्ष की थी, परंतु अनेक विद्वानों का विचार है कि यह अन्य कैलेंडर के अनुसार है, परंतु मैं इस विषय पर अधिक विवाद करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इससे जटिलता बढ़ती है जो मेरे विचार में आवश्यक नहीं है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 137 के एक पद में, मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। लिखा है कि वे बेबीलोन के नहरों के किनारे बैठे रो रहे थे, जबकि यहेजकेल परमेश्वर का दर्शन देख रहा था। यह कैसी विषमता, परमेश्वर का दर्शन और रोना है। तब हम आगे पढ़ते हैं यहेजकेल की पुस्तक 1:2 में, जहां पर लिखा है, यहोयाकीन राजा की बंधुआई के पांचवें वर्ष के चौथे महीने के पांचवें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर। मेरे प्रियो, यहां पर ध्यान दें, अभी यरूशलेम नष्ट नहीं किया गया है। यरूशलेम सिदकिया के युग में नष्ट किया गया था। तब हम आगे देख रहे हैं यहेजकेल 1:3 में, यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। लिखा है, यहोवा का वचन यहेजकेल के पास पहुंचा। यहेजकेल लेवी गोत्र का था और याजक था, संभवतः कोहातियों के वंश से। लिखा है कि वह बूजी का पुत्र था। आगे हम देखें कि कबार नदी पारात महानद से निकलने वाली मुख्य नहर थी, या उससे क्षेत्र की बहुत बड़ी नहर थी और उससे क्षेत्र को सींचती थी। इससे संकेत मिलता है कि यहूदावासी बंदी वहां खेती करने के लिए रखे गए थे। यह क्षेत्र बेबीलोन से कई मील दूर था। यह एक कारण था कि यहेजकेल और दानियल एक दूसरे से, अर्थात परस्पर भेंट नहीं कर पाए। निसंदेह दानियल वहां आता होगा, परंतु यहेजकेल को उससे भेंट करने की अनुमति नहीं मिलती होगी। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि यहेजकेल और दानियल एक ही देश में हैं, परंतु एक दूसरे से भेंट नहीं कर पाए। परंतु हम यह भी देखते हैं कि परमेश्वर दोनों को अलग अलग स्थान पर प्रयोग में ले रहा है, उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए अपने लोगों को खड़ा करता है। यहेजकेल की पुस्तक में हम इन्हीं बातों को और अधिक आगे देखेंगे। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा से हमने जो परिचय देखे हैं और हमने 1-3 तक के अध्ययन को देखा है, इसके द्वारा से आपने अवश्य ही यहेजकेल की पृष्ठभूमि को जान लिया है। अगले अध्ययन में हम इससे और अधिक जानकारी को प्राप्त करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी श्रोता मित्र इस अध्ययन को अवश्य ही सुने, ताकि अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने मित्रों के जीवन में आशीषों को दे सकें, प्राप्त कर सकें। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आपको और अधिक आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो, मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। हे ईशु, मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो। हे ईशु, मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो, मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मेरे मन के मंदिर में आकर विराजो, मुझे प्रेम करने का वरदान दे दो। मेरे मन के मंदिर में आकर विराजो, मुझे प्रेम करने का वरदान दे दो। मैं जब डगमगाऊं परीक्षा में आकर, मुझे उस समय बल है बलवान दे दो। मैं जब डगमगाऊं परीक्षा में आकर, मुझे उस समय बल है बलवान दे दो। हे ईशु, मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो, मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मैं सतपथ पे जीवन को बलिदान कर दूं, मुझे ऐसी हिम्मत जिगर जान दे दो। मैं सतपथ पे जीवन को बलिदान कर दूं, मुझे ऐसी हिम्मत जिगर जान दे दो। जीवन नदी में भंवर गहरे गहरे, ये नैया न डूबे तुम्हें ध्यान दे दो। जीवन नदी में भंवर गहरे गहरे, ये नैया न डूबे तुम्हें ध्यान दे दो। हे ईशु, मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो, मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो, मुझे अपना